ओम शांति। आदरणीय मोहन भाई जी आज इस सभा में हमारे सामने उपस्थित है, हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है। बोरेवली की इस फुलवारी की ओर से भाई जी के लिए कुछ शब्द सुमन। बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में वसंत बहार है। बगिया में खिले फूलों से ही मौसम में वसंत बहार है। आपके पधारने से ही भाई जी, आपके पधारने से ही सभा में उठी फुहार है। भ्राता मोहन सिंघल जी 1962 में जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तब आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तथा संस्था के साथ अनेक सेवाओं से जुड़ गए। बिहार, आसाम और गुजरात में आप इस संस्था की कई शाखाओं को खोलने के निमित्त भी बने। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान आपके निर्देशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से 12 पदयात्राएं निकाली गई और उस समय आप यूथ विंग के सचिव पद पर भी थे। वर्तमान समय आप इस संस्था के ज्ञान सरोवर परिसर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर इस पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1988 से आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं। इसके अलावा आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपना हिस्सा भी दिया हुआ है। आज हम सुनेंगे अंतमति सुगति इस विषय पर भाई जी से। आदरणीय भ्राता मोहन जी।
ओम शांति। आज का विषय जो है आज के दिन के लिए बहुत अनुरूप है। कैसे है आज आपकी भट्टी का अंतिम दिन भी है ना, और जीवन को कहा ही जाता है दो दिन की जिंदगानी, आज और कल का खेल है सारा। कल आप आए थे, आज बस हैं और जा रहे हैं, और इसीलिए अंतिम दिन है और अंतमते सोगति। यहाँ से जो भी 3 दिन में 4 दिन में इकट्ठा किया है हम तो समझते हैं आपके लिए बहुत बहुत जीवन के लिए सदा के लिए वो मार्गदर्शक बन जाएगा, प्रकाश स्तंभ बन जाता है। और ये बात लौकिक में भी अनुरूप है और अलौकिक में भी, अंतमति सोगति, क्योंकि जीवन के हर कार्य का जो एंड रिजल्ट होता है वो ही काउंट करता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, साल भर बहुत पढ़ाई की लेकिन अगर एग्जाम में फेयर नहीं कर सका अच्छा, तो उसका लाभ क्या? बहुत मेहनत भी की, पढ़ाई भी की, तो सारा काउंट इस पर करता है कि जब लास्ट हमारा वो, और हम सबका पुरुषार्थ भी जो चाहे 75, 76, 77 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, जो कुछ वर्षों से हैं, कुछ मास से हैं, तो सबका पुरुषार्थ उस एक सेकंड पर निर्भर करता है, अंतिम अवस्था पर जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे। और उस समय जैसी जिसकी अवस्था होगी, स्थिति होगी, उस अनुसार ही पूरे कल्प का प्रारब्ध उस पर निर्भर करता है, सारे कल्प का। लौकिक में भी नौकरी जो करते हैं जानते हैं कि रिटायरमेंट जब होता है तो सारे रिटायरमेंट में जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, जो कुछ चीज किस आधार पर होती है, एक उसे LPC बोलते हैं, लास्ट पे सर्टिफिकेट। लास्ट में आप जितना ड्रॉ कर रहे थे सैलरी या वो, उस पर ही सारा बचे हुए जीवन का आगे आने वाले जीवन का निर्भर करता है। तो इसीलिए हम सब को भी पुरुषार्थ तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ ये ऑडिट करना बहुत जरूरी है कि हमारा पुरुषार्थ की दशा और दिशा डायरेक्शन वो ठीक जगह चल रही है, और इसीलिए बीच बीच में उसको चेकिंग करना, ऑडिट करना, और फिर रिक्वायर्ड हो तो करेक्शन करना वो बहुत आवश्यक है। यहां पृथ्वी से भी जब कोई मंगल ग्रह पर या चंद्रमा पर कोई भी भेजते हैं ग्रह, रॉकेट वगैरह, स्पुतनिक, तो कोई भी चीज जो भेजी जाती है तो बस एक बार भेज दी, उस पर निर्भर नहीं करता है, बीच में कई जगह करेक्शन करनी पड़ती है उसकी, और तब वो अपनी मंजिल की तरफ ठीक हालत में पहुंचता है। प्रतिदिन के जीवन में भी मान लीजिए कोई तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा अनइजीनेस है, थर्मोमीटर से देखेंगे भाई बुखार है या क्या है, दवाई लेंगे, ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, उससे क्या डायरेक्शन है हमारी अकॉर्डिंगली ठीक। तो ऐसे ही कुछ ऐसे फिजिकल मेजर होने चाहिए जिससे कि हम अपने पुरुषार्थ को टाइम टू टाइम चेक कर सकें, और जो अंतिम समय तक हमें ठिकाने तक, पूरी मंजिल तक ले जा सके। हमें साकार बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला 1962 से, कई बार जब ज्ञान में आए उसके बाद साकार बाबा से कई बार मिले, बहुत बार। तब तो छोटा परिवार था, बाबा समय भी देते थे, लेकिन सबसे बड़ा भाग्य ये है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, 17 और 18 जनवरी को हम यहीं पर ही थे, और बाबा की अंतिम अवस्था देखने का जो सौभाग्य मिला, तो वो भी कुछ पॉइंट्स हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य विकर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का है, फरिश्तापन की स्थिति को पाने का है, और जिससे कि अंत में हमारी मति और गति ठीक हो सके। तो जब हम अंतिम समय की कोई भी बात करते हैं तो बाबा ने बहुत सारी चीजें हमें बताई है कि सतयुग में जो जो हमारी स्थिति होगी, जो हमारे संस्कार होंगे, वो सारे संस्कार यहाँ अंतिम समय की स्थिति में हमें अनुभव होने चाहिए। केवल हमें ही नहीं, सभी को, पूरे परिवार, जो भी हमारे साथ रहते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंतिम समय का जो, जैसे बाबा ने कहा इस लास्ट टाइम भी, भाई खुशी का, कोई भी परिस्थिति आए खुश रहना है, खुश करना है मानो, क्योंकि सतयुग में हमेशा खुश रहेंगे, इसने वो संस्कार यहीं से ही धारण करना है। तो ये जो संस्कार है, कोई भी संस्कार जो धारण करना है, हम चाहते भी हैं, लेकिन कई बार के पुरुषार्थ के बाद भी पूरा धारण नहीं हो पाता, ऐसा अनुभव होता है, और अगर कोई भी परिस्थिति आई, पुराना संस्कार एमर्ज हो जाते हैं। तो इससे क्या करें कि पुराने संस्कार कभी एमर्ज न हो, और नए संस्कार जो हम धारण करते चल रहे हैं वो हमारे इतने पक्के हो जाए कि पुराना संस्कार ऐसे ही लगे जैसे पिछले जन्म का संस्कार है, इस जन्म का नहीं। और इसके लिए हमारे चिकित्सक भी, डॉक्टर्स भी, मनोवैज्ञानिक भी एक बात विशेष बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। एक हमारा अर्थ चेतन, ये तो चेतन मन है, जो हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, जो हम सब लोग सारे दिन भर यूज करते हैं, लेकिन जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर कोई भी बात अगर डाल दी जाती है तो वो इतना इतना पावरफुल हो जाता है, होता है माइंड, कि वो 100% वो बात सिद्ध हो जाती है। कोई भी कभी भी वो बात सिद्ध न हो, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिक सबका मत है, तो हम सबकी तो इच्छा यही है ना, हम सब विजयी रतन बने, माला का मणका बने, चक्रवर्ती महाराजा महारानी बने, सब यही चाहते हैं ना। हम सबका पुरुषार्थ इसी के लिए होता है। तो एक तो ये बात हम प्रतिदिन हमेशा ये घुसाते रहे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी कि मैं माला का मणका हूं, मैं विजयी रतन हूं। बाबा आपने हमें कल्प पहले भी विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो और कल्प कल्प हम इसी तरह विजयी बनते रहेंगे। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस को स्वीकार करता है, फ्यूचर टेंस को नहीं। बाबा आप हमें बनाओ, हम कल्प बनेंगे, ये नहीं। इस बात को सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार नहीं करता। प्रेजेंट हम हैं, बाबा आपने हमें बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो विजयी रतन, और कल्प कल्प हम बनते हैं। ओनली पॉजिटिव टेंस को ही वो स्वीकार करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव को। मैं, मेरे से ये निकल जाए, ये विकार क्रोध निकल जाए, इस बात को स्वीकार नहीं करता। ये मतलब बहुत बड़ी रिसर्च इसका परिणाम है। और इस कारण से एक तो हम जो हमें समान बाबा ने दिए हुए हैं, उन समानों को बार बार रिपीट करते रहें, बाबा हम आपकी मस्तक मणि हैं, बाबा हम आपके नैनों के नूर हैं, हम आपके दिल तक नशीन बाबा बच्चे हैं, बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। बस वो जितना जितना हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये घुसाते रहेंगे, ये हमारे मन में घुस जाएगा जब पूरा कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं कल्प पहले वाला, मैं माला का मणका हूँ, तो ऑटोमेटिकली परिस्थितियां उसके अनुरूप होती चलेंगी। आज परिस्थिति उसके अनुरूप नहीं भी है, लेकिन ये जितना घुसता जाएगा परिस्थितियां ऑटोमेटिकली उसके अनुरूप होती चलेंगी, हमारा पुरुषार्थ उसके अनुरूप होता चलेगा। तो एक तो ये बात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज खूब चार्ज करें और देखते चलें कि किस प्रकार से ये होता चलता है। साथ साथ हाँ, मालक कोई कैसे होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन, वो तो बाबा ने बहुत बताई हैं, लेकिन एक तो ये, दूसरी बात बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हम बच्चों के सामने क्या क्या पेपर आने हैं और कैसे उनसे हमें निबटते चलना है। हाँ, कौन से पेपर बाबा ने बताए हैं हम बच्चों को, बहुत बताए हैं, सब समय प्रति समय बताते रहते हैं। हाँ रिपीट करिए, स्वभाव संस्कार, प्राकृतिक आपदाएं और मोह के पेपर, कर्म भोग सब राइट। बाबा ने बहुत अनेक प्रकार के पेपर जो बताए हैं, उनमें भी वर्तमान समय के मुताबिक बाबा ने जो दो पेपर बताए हैं खास करके, वो दो पेपर है, एक अपने शरीर का पेपर और दूसरा परिवार का पेपर, हमारे ये दैवी परिवार का। वैसे बहुत पेपर बाबा ने बताया, भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, उनका अभाव हो जाएगा, जैसे आज भी बात हो रही थी, भाई पानी होगा पीने लायक नहीं होगा, खाना होगा खाने लायक नहीं होगा, इनका अभाव होगा। तो जितना जितना हम बच्चों की इनमें आसक्ति नहीं होगी, उतना उतना हम सफल होके चलते रहेंगे। इसीलिए बाबा ने बीच में बैगरी पार्ट भी बताया बच्चों को, और अलग अलग प्रकार के। तो एक ये है आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, और बाबा ने पांच विकारों का और पुराने संस्कारों का, और क्या बताया बाबा ने, हाँ पांच प्रकृति के पांच तत्वों का आदि आदि। इन सब में एक ये भी है कि कुछ भटकती हुई आत्माओं का पेपर ऐसे, क्योंकि अभी जब समूह मृत्यु और अकाले मृत्यु होगी बहुत, तो काफी ऐसी आत्माएं होंगी जिनकी अतृप्त इच्छाएं होंगी, और जो एकाएक जब शरीर छोड़ देंगी और उनका गर्भ में तैयार नहीं होगा शरीर, तो वो आत्माएं कुछ समय के लिए जैसे भटकती नहीं है, बल्कि अपनी अतृप्त इच्छाओं को किसी न किसी शरीर के माध्यम से पूरा करती है। दादी गुलजार जी एक बार बता रहे थे कि उधर बहुत पहले की बात है, रजौरी गार्डन में बहुत पहले, कई 40-50 वर्ष पहले सेंटर जो था, तो वहाँ एक माता आती थी, काफी पुरानी माता थी, और वो उसमें ना, तो बाद में जब बीमार पड़ी, तो बीमार होने के बाद बस बहुत अच्छी धारणा युक्त माता थी, लेकिन अंतिम समय में बिस्तर पर पड़े पड़े बस उसे कैसे ये हुआ भाई, मुझे कुछ ये प्याज का लहसुन का ये खाना बना के दो, बहुत अच्छी धारणा, मुझे ये नॉन वेज दो। तो सब सोच रहे थे ये इसको कैसे, मतलब क्या हो गया है। तो बाबा से पूछा तो बाबा ने यही बताया, देखो बच्चे इसीलिए बाबा कहता है कि आवश्यक क्या है, जो सच्चाई और सफाई। कोई भी अशुद्ध आत्माएं होती है ना, तो वैसे भी लौकिक में कहते हैं उनका वास जो होता है कहाँ रहती है वो अशुद्ध आत्माएं, भाई अशुद्ध जगह, ये शमशान घाट वगैरह, कब्रिस्तान, ऐसे। तो ऐसे ही अगर कोई अशुद्ध आत्मा को हमारे द्वारा, अगर कोई हिसाब किताब है हमारे शरीर के द्वारा, उसे कोई वो हिसाब किताब चुकतू करना है, तो हम चाहें अगर उससे बचें, तो हमें ये जो बाबा ने सफाई और सच्चाई, बाहर की सफाई भी शरीर की, जो तो हमारा नियम है, सब जानते हैं और वो करते ही हैं, हमारा एक अंग बन गया है, रोज भाई स्नान पानी आदि, कपड़े बदलना, सब कुछ, लेकिन अंदर की सफाई, अगर अंदर की भी सफाई नहीं होगी, कहीं पर भी दिल में कुछ कलुषित पना हुआ अपने लिए, यज्ञ के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए, तो वो जो है ऐसी आत्माओं के आह्वान का निमंत्रण दे देगी जैसे। और ऐसे कई होते हैं जिनके द्वारा अशुद्ध आत्मा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बोला है, हाँ, तीन सर्टिफिकेट में दिए है ना बाबा ने, हर एक को लेने हैं, वो तो सबको मालूम है कौन कौन से तीन, स्वयं से, प्रभु से और परिवार से। तो अगर प्रभु से ये सच्चाई, ये प्रभु से सर्टिफिकेट लेना है, तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो बाबा ने कहा है कि सच्चे दिल पर साहब राजी। इसीलिए वो सच्चा, केवल एक चीज बस यही कि बाबा जो भी हम जो हैं जैसे हैं वैसे बाबा के सम्मुख। और ब्रह्मा बाबा ने यही तो किया, क्योंकि अभी तक हमारे सामने केवल एक ही रोल मॉडल है, ब्रह्मा बाबा, जो बिल्कुल अंत समय सच्चाई सफाई के साथ किस प्रकार से संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुआ। बाकी सभी आत्माएं भले बहुत अंतिम स्थिति सब पहुंच गए, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म तो लिया हर एक ने, केवल ब्रह्मा बाबा ही है, और जिस जो सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हम बच्चे भी अगर विजयी रतन होना चाहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पर ये चलते चले। तो भगवान से सर्टिफिकेट के लिए सच्चाई सफाई, सिंपल हा? और अपने से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या चाहिए है? संतुष्टता, स्वयं का पुरुषार्थ, और बड़ा सिंपल है, स्वयं से कब स्वयं को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है? खुशी नहीं हो, कब खुशी नहीं होती है, कब गायब होती, जब कहीं ना कहीं कोई मर्यादा का हम उल्लंघन करते हैं ना, तो भले किसी ने नहीं देखा, हमें कोई ऐसा डर नहीं है सोशल हमारी प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी किसी ने वो, लेकिन अपनी अंतरात्मा ही खाती है, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में है ना, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो अगर हमारे मन वचन कर्म में आता है, मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो खुद ही हम जैसे अपने को सर्टिफिकेट से कट कर लेते हैं। तो इसलिए खुद से सर्टिफिकेट लेने के लिए केवल एक ये चीज कि मर्यादा का उल्लंघन ना हो कभी भी, कोई भी जो हमारी बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं। और परिवार से सर्टिफिकेट लेने का जो बाबा ने कहा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है वर्तमान परिस्थितियों में क्या, बस हर एक कोई जो है आज जो है ना मान का भूखा है, हर एक को रिगार्ड देते चलो, रिस्पेक्ट देते चलो, तो परिवार से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, संबंध बिजनेस वाले हो पड़ोसी हो, कोई हो, ज्ञान में चले न चले लेकिन उनको रिगार्ड देते चले। खैर, तो अभी हम ये देखते हैं कि किस रीति से ब्रह्मा बाबा ने ये सर्टिफिकेट प्राप्त करके ये ही नहीं अंत मते संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त किया। तो एक बात तो ये हमने देखा कि खुशी हमारी गायब न हो, खुशी गायब न हो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या बात होती है खुशी नॉर्मल केस में, सब परिवार के और जीवन के अनुभवी हैं। खुशी कब हमारी कम होती है, कब हमें ऐसा महसूस होता है कि कब कैसी परिस्थिति में, संशय या देखिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है ना उसने एक सिद्धांत बहुत अच्छा दिया है, कौन सा, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। और जब हम इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं हमारी खुशी गायब, हम मनुष्य की नेचर है कि वो दूसरे को अपने अनुरूप चलाना चाहता है, सास बहू को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को अपनी इच्छा के अनुरूप चलाना चाहता है। और जब हमारी इच्छा के अनुरूप दूसरा अगर नहीं चलता है हमारी खुशी भी गायब नहीं होती, गुस्सा आता है, कई चीजों को हम निमंत्रण दे देते हैं। तो इसीलिए हैप्पीनेस का एक बड़ा अच्छा फार्मूला किसी ने बताया है, खुशी का क्या फार्मूला है, बड़ा सिंपल, हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। यानी खुशी जो है अचीवमेंट प्राप्ति डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा है। तो हैप्पीनेस का लेवल कब हाई होगा, कब ऊंचा होगा हैप्पीनेस, खुशी, जब एक्सपेक्टेशन हमारी कम से कम, मिनिमम एक्सपेक्टेशन, बस हमारी स्टूडेंट की टीचर के प्रति, टीचर का स्टूडेंट का, परिवार का, एक दूसरे हस्बैंड का वाइफ से, ये कुछ भी एक्सपेक्टेशन अगर होती हैं, और आज के जमाने में एक्सपेक्टेशन किसी की भी फुलफिल नहीं हो सकती संपूर्ण, तो हमारा हैप्पीनेस लेवल कम हो जाता है, खुशी कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं, हाँ संगठन में कार्य करें, सबसे सहयोग दें, सहयोग लें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अगर हमारी थोड़ी भी हाई हो गई, और जो वो सब एक्सपेक्टेशन किसी की भी पूरी नहीं हो सकती दुनिया में, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी नहीं हो सकते। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जितनी कम से कम रखेंगे खुशी हमारी लेवल बढ़ती चले। साकार बाबा को हमने देखा, बाबा इतना बड़ा यज्ञ संभालते थे, सब बाबा के पास जाते थे, बाबा से मिलते थे बाबा, लेकिन अक्सर करके तब यज्ञ के पास ना इतने साधन थे, सब नहीं था, कई बात बाबा बोलते थे नहीं हो पाती थी, तो बाबा बस एक बात, बाबा समझते हैं अभी अर्जुन समय नहीं आया है, समय पर हो जाएगी, बाबा समझते हैं अभी इस बच्चे का ये संस्कार है, समय और परिस्थितियां अपने आप इसको ठीक कर देंगे। कोई उसकी वजह से बाबा का खुशी का लेवल डाउन हो जाए, या अरे मैं तो ये संचालक हूं यज्ञ का, इसने ये बात नहीं मानी, कुछ नहीं। इसीलिए एक बड़े से बड़ा ये संस्कार जो बाबा का देखा ना, कि हर परिस्थिति में खुद ये रहे, और वो कब होगा खुशी हमारी, कब सदा कायम रहेगी, जब हम दूसरे की कोई भी बात देखते हैं ना, किसी के द्वारा कोई किया हुआ अपमान है, कोई ऐसी बात है जो पिंच कर रही है हमें, वो जब जब पिंच करती है हमारी खुशी कम होती है, दुख होता है, अपमान की महसूसता, वो इवेंट याद आ जाता है बार बार, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी कुछ घृणा या ईर्ष्या, कोई ना कोई ऐसी निगेटिविटी आ जाती है। उसको तो पता नहीं चलता, वो तो करके चला गया, लेकिन हम अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, हमारे अंदर बदले की भावना या उसके अपमान करने की भावना या रॉयल रूप में थोड़ा उसको अवॉइड करने की भावना, जिसके प्रति हमारा बहुत संबंध नहीं होते तो थोड़ा हम अवॉइड कर जाते हैं, सामने से भी आएगा, नजर घुमा के चले गए। बाबा ने कहा है ये जो है ना संस्कार, इतना अब तक बाबा ने कहा किसी के प्रति भी न लाइकिंग हो न डिसलाइकिंग हो। हर आत्मा के प्रति जहां लाइकिंग होगी वहां लगाओ झुकाओ और बहुत और पेपर आ जाएंगे, और डिसलाइकिंग होगी तो ये निगेटिविटी, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, बदले की भावना आदि आदि अवॉइडिंग, और ये ही हमें माला का मणका बनने से रोक देती है। बात ये कोने हैं, कोई भी कोना होता है ना तो कोना दुख देता है। देखो माला का मणका गोल होता है, चारों कहीं जिसे भी पकड़ो उसे दुख नहीं देगा, टॉर्चर नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे भी ये सब जो कोने हैं, ये निगेटिविटी जितनी है, बड़े बड़े कोने तो हमने निकाल दिए, काम क्रोध लोभ मोह आदि के, लेकिन ये जितने कोने हैं ये हमें भी दुख देते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। इनको हमें, इन कोनों को निकाल करके जितना हम इनकी शार्पनेस को कम करते जाएंगे उतना स्मूथनेस आती जाएगी, माला का मणका बनते जाएंगे। तो इसीलिए एक ये कि दूसरे की बात ये कब होगी, भाई मन में तो है, इसने ये मेरे साथ किया है, कोई इवेंट है, खराब बात है, कोई अपमान है, लेकिन कब हम, हमारे मन में उसके प्रति ये निगेटिविटी नहीं होगी, कब नहीं आएगी, जब हमने सच्चे दिल से उसे माफ किया हुआ होगा। क्षमा, जो महान आत्माएं हैं उन सभी का गुण है एक क्षमा करना। इसीलिए कहा ये ना कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं। बाबा ने महावीर हम बच्चों को कहा है, तो हम अपने को चेक करें कि मैं कायर हूं या महावीर हूं। क्या अभी तक किसी को देखते ही या किसी के प्रति कोई डिसलाइकिंग लाइकिंग या किसी के प्रति उसके पुरानी घटना की आवृत्ति कोई भी ये बात याद आती है, यानी मैं कायर हूं। और महावीर माने बस उसको क्षमा एक बार, ईश्वर के लिए कहते हैं ईश्वर गिव्स एंड फॉरगिव्स, और मनुष्य गेट एंड फॉरगेट, भगवान से लेता है और भूल भी जाता है भगवान को। तो इसीलिए ये क्षमा का गुण वो होगा, ये जितना जितना ये धारण तो अंत मते सो गते हमारी बिल्कुल निश्चित है अच्छी गति। और साथ में क्या बाबा ने कहा है ना, परिवार का पेपर, वो ये पेपर बहुत बड़े से बड़ा हम बच्चों के सामने, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया और सब प्रकार के बच्चे हैं, राजा भी बनने वाले हैं, मतलब महाराजा महारानी के साथ साथ साधारण प्रजा भी है, परिवार रॉयल फैमिली, सबके संस्कार अलग अलग हैं। अंत तक की प्रजा पूरी तैयार हो रही है तो संस्कार तो अलग होंगे, और ये जरूरी नहीं कि जो बहुत पहले के हैं उनके संस्कार ही रॉयल हों और जो बाद में आ रहे हैं उनके साधारणों नहीं। लास्ट सो फास्ट बाबा ने एक मुरली में बहुत पहले बोला था, मेरी माला की एक विशेषता है, बहुत पहले 70s की मुरली थी, माला की क्या विशेषता है? है नहीं, मेरी इस माला में सब प्रकार के बच्चे हैं, जो आदि रतन है 1936-37 के वो भी हैं, और लास्ट वाले में भी है, लास्ट सो फास्ट जाने वाला वो है, विदेश भारतवासी भी है तो विदेशी भी है, कुमारियां हैं तो अधर कुमारी भी है, कुमार है तो अधर कुमार भी है, समर्पित बच्चे हैं तो परिवार में रहने वाले वो बच्चा भी है। यही माला की विशेषता है, नहीं तो भगवान को न्यायकारी कैसे कहेंगे? अगर सारे भगवान ने 1936 वाले ही ले लिए तो हमारा आपका स्कोप कहाँ रहा? हाँ, तो इसीलिए भगवान न्यायकारी है, उसने पूरा स्कोप। गवर्नमेंट में भी क्या होता है भाई, जॉब अगर होती है, पोस्ट होती है तो पोस्ट रिजर्व होती है, जो शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, बैकवर्ड क्लास की पोस्ट होगी उससे ही वो भरी जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं भी है तो वो खाली रहेगी, ऐसा होता है ना। तो जो माला के मणकों में जो परिवार वाले अधर कुमार अधर कुमारी के लिए जो माला का मणका बुक है, समर्पित वाला भले पुराने से पुराना वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रामा अनुसार वो उसके ही द्वारा फिल होनी और उसका पुरुषार्थ इतना तेज होना है जो कि पहले आने वालों से भी तेज चला जाएगा। तो हर एक ये सोचे मेरा इक्वली चांस है माला में मणके में आने का, क्योंकि बाबा ने बताया कई प्रकार के माला, 108 की नहीं, कई प्रकार की मेरे माला के हैं, कई माला के वो है। तो इसीलिए एक परिवार का जो बाबा ने बताया है, तो परिवार का पेपर कौन सा आता है, जब हम कोई बहुत पुराने को देखते हैं तो अरे इतने साल, 40 साल, 50 साल वाले पुराने, इनमें भी ये क्रोध, इनमें भी ये अहंकार का, इनमें भी ये ऐसा विकार का अंश, तो हमारे मन में बहुत प्रकार के प्रश्न पैदा हो जाते हैं। और बस जब यही बाबा ने जो बोला, हमारे दो प्रकार के बाबा ने जो बताया ना, हमारे खजाने कौन से हैं, अनेक खजाने बताए लेकिन दो खजाने जो हरेक को बहुत बढ़ाते जाना है, वो कौन से, समय और संकल्प। तो जैसे हम परिवार का ये पेपर कोई रोज आते हैं, देखते हैं, तो बस ये समय भी वेस्ट होता है इसमें और संकल्प भी वेस्ट होता है। जो बाबा ने कहा है, अभी मेरे बच्चों के विकारी संकल्प नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प है। तो जब ऐसे पेपर बार 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 ना जब ये आते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, हमें थोड़ा अपने ऊपर न सही लेकिन बस बाबा के ऊपर, बाबा इतने पुराने ये, इसमें भी ये संस्कार, अगर इसमें है तो मेरे में हुआ तो क्या हुआ, और इस रीति से वो भगवान के ऊपर थोड़ा संशय आ जाता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, हर बच्चे को देखो, किसी भी मेरे बच्चे को देखो, कभी भी एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, तीनों कालों की दृष्टि से, वो क्या था, क्या है और क्या बनने वाला है। साथ में बाबा ने कहा है कि मेरा एक एक बच्चा, लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो मेरा है, वो दुनिया का जो सबसे आगे वाला भी बच्चा है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, उससे भी महान है मेरा लास्ट में लास्ट वाला बच्चा। तो ये हमें खुशी क्यों, क्योंकि भगवान केवल पोजीशन नहीं देखता कि भाई पोजीशन के आधार पर, बल्कि भगवान तीनों कालों को वो जानता है कि ये मेरे बच्चे अभी भले साधारण दिखने में आ रहे हैं लेकिन ये वही हैं जो डबल ताजधारी वाले थे, विश्व महाराजन, विश्व महारानी थे, भगवान की नजरों में वो होता है, इसलिए भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है। साधारण बात नहीं, हम भगवान के सेलेक्टेड बच्चे हैं, और जिसमें हम आज कोई कमी देख रहे हैं, कमजोरी देख रहे हैं, वो भी भगवान का सेलेक्ट किया हुआ बच्चा है। और इस कारण से हम कभी भी ये ना सोचे ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे फिल्म होती है, कोई ड्रामा है, हा? अगर ड्रामा ऊपर से नीचे तक, शुरू से आखिर 3 घंटे तक बिल्कुल मोनोटोनस ही चलता रहे तो उसमें कुछ आनंद नहीं होगा। ड्रामा होता है, हीरो हीरोइन के पार्ट होता है, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई विलेन होगा, कोई मारकाट होगा, गाने होंगे, मतलब जितनी वैरायटी होती है उतना ड्रामा इंटरेस्टिंग होता है। और बाबा ने कहा ये विश्व ड्रामा मुझे बहुत प्रिय है, भगवान को प्रिय है, क्योंकि बाबा ने कहा ये बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। भगवान को जो चीज प्रिय है तो हमें अप्रिय हो ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। जो भगवान को प्रिय है वो जानता है तीनों कालों का हरेक को, तो इसीलिए इस ड्रामे को देख करके हमें हमेशा ही हर्षित रहना है, कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति कोई संशय और वो नहीं है, क्योंकि भगवान की सेलेक्ट की हुई आत्मा है। हाँ आज उसका ये पार्ट दिख रहा है लेकिन समय आने पर चूंकि भगवान ने उसे चुना है और उसके द्वारा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी है, पार्ट होना है जिससे भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी, लेकिन समय पर, अपने समय पर। इसीलिए वो कोई भी ड्रामा, हाँ उसके प्रति हमारी शुभ भावना रहे, शुभकामना रहे, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में वो आत्मा आए फिर से, लेकिन मुख्य यह है कि उसके प्रति संशय न हो। तीनों कालों की दृष्टि से देखें, ये वही आत्मा है जो डबल ताजधारी है, अभी भले इसके द्वारा ये कोई भी उतना मर्यादा युक्त मानव कार्य नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा समय आएगा फिर से ये आत्मा अपने पुनः स्थिति में, सोमान में स्थित होकर के भगवान का कार्य करने के निमित्त बनेगी। तो एक तो हम परिवार के सब बच्चों को हम हमेशा ही तीनों कालों की दृष्टि से देखेंगे, तो कभी भी किसी के पार्ट की तरफ हमारी उंगली नहीं उठेगी, संशय नहीं आएगा। और जब ये संशय नहीं आएगा, हमारी खुशी भी बरकरार रहेगी, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, व्यर्थ समय नहीं गुजरेगा, तो हमारी अंतमति सोगति की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या चिन्ह है? हम लोग बाबा को जब मिलते थे 1962 के बाद, जैसे बताया, तब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और बाबा के पास आते थे, मिलते थे, बाबा को बातें कहते थे, बाबा समाधान देते थे, समय देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा, जब 66-67 वगैरह हुआ, 1966-67, तो बस दो चार लाइन ही बोलते थे, एक दो लाइन कोई अपनी बात, तो बाबा कहते थे, बच्चे हाँ बाबा समझ गया। हम कहते थे, बाबा अभी तो बोलना शुरू ही किया है, थोड़ा ही बोला है, चार पांच सेंटेंस। नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया, ये करो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो हमने 17 और 18 जनवरी को देखी, दो दिन, जब अंतिम दो दिन 1969 में यहाँ थे। वैसे हमारी पोस्टिंग बहुत दूर थी, इंजीनियरिंग पास करके ONGC ज्वाइन किया और सबसे आसाम में पोस्टिंग थी, बहुत दूर। लेकिन बाबा ने बस अपने पास युक्ति से बुला लिया और 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए यहाँ पर। तो देखा हम, भाई बाबा से हम ये पूछेंगे, वहाँ कोई टीचर नहीं थी, हम क्लास चलाते थे आसाम में, तब कोई सेंटर नहीं था वहाँ पर, एक भी सेंटर नहीं, 1969 की बात है। तो बाबा से ये पूछेंगे अपने व्यक्तिगत, ये सेवा की बात, ये बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा ने ऐसे थोड़ा दृष्टि दी, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब पहले 1962-63 वगैरह में बाबा को सब बात बताते थे तो बाबा समाधान, बीच में 67 वगैरह की बाबा के पास जाते थे, दो चार सेंटेंस बोलते थे तो बाबा समाधान। अभी तो एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और ऐसा दो दिन में 6-7 बार हुआ। बस बाबा के सम्मुख जाते थे, दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। ये एक वो है कि हम आत्मा कर्मातीत अवस्था की तरफ पहुंचती जा रही हैं, और जो बाबा ने हम बच्चों को भी होमवर्क दिया है कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते। अपना मन इतना जीत लिया था बाबा ने कि दूसरे के मन की बात को तुरंत ही एक सेकंड में परख लेते थे। यह है मन जीते जगत जीत का लक्षण, और ये हम सब बच्चों को प्राप्त करना है। और अंत में ये बहुत आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जब विश्व की आत्मा हमारे सम्मुख आएंगी, त्राही त्राही चारों तरफ होगी और साक्षात्कार की इच्छा लेके आएंगी, भिन्न भिन्न आत्माएं, तो क्या होगा? मानो हमारे सामने 10 आत्माएं आई, कोई हनुमान का भक्त है, कोई गणेश का है, कोई राम का है, कोई कृष्ण का है, अलग अलग इच्छाएं लेके आई। हम किसको कैसा साक्षात्कार बाबा हमारे द्वारा कैसे कराएगा? जब वो आत्माएं आएंगी और एक सेकंड में हम उनके मन के भाव को जान लेंगे कि ये, और वो कब होगा? जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या बना हुए होंगे, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होगी, मन जीते जगत जीत होंगे, हम मन को जीता होगा, तो हम दूसरे के मन की बात को पढ़ के तुरंत हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। और ये बात हमने साकार में बाबा में भी देखी। बाबा की जीवन कहानी में भी आपने पढ़ा होगा ना कि बाबा की बाबा से सबको साक्षात्कार होता था, कृष्ण का, नारायण का, सुरक का, रास विलास करते थे, खेल कूद करते थे, क्योंकि वो नारायण की आत्मा थी। लेकिन जब यज्ञ का सुना है वो सरदार जी वाला किस्सा ना, कि एक सरदार जी थोड़ा यज्ञ के अपोजिशन में थे और वो नहीं चाहते थे उनका परिवार आए, तो उन्होंने निश्चय किया कि बाबा को मारेंगे, तो छुरी लेकर आए थे और बहन से कहा बाबा से मिलना है। बाबा बहन बाबा के पास बैठा के उन्हें चली गई, और जब वो अकेले थे तो उसने छुरी निकाली और बाबा की तरफ मारने जब गया तो क्या हुआ? गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ। अब बाबा गुरु नानक की तो आत्मा नहीं है, तो उनसे तो सबको नारायण का साक्षात्कार होता था, लेकिन उसकी भावना चूंकि गुरु नानक देव में थी तो शिव बाबा ने बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उसे गुरु नानक देव का, तो जैसे ही उसे साक्षात्कार हुआ वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे गुरुजी मैं क्या करने जा रहा था आपकी हत्या करने, मैं कितना पापी हूँ, नीच हूँ, मुझे माफ करो। और बस छुरी वहां रखी और बस रोता रोता माफी मांगता हुआ वहां से बाबा के पास से चला गया। ये सारे पार्ट हमारे आपके द्वारा रिपीट होने हैं अंत में सब तरफ से, क्योंकि तभी तो ये सिद्धांत निकलेगा ना। जितने भक्ति मार्ग के सिद्धांत निकले हैं सब हमारे से ही निकले हैं। उस समय जब हम एक होंगे, हमारे द्वारा 10 आत्माएं जो अलग अलग आई होंगी उसको अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान का, राम का, देवी का, कृष्ण का, सबका साक्षात्कार होगा जिसमें उनकी भावना होगी, और तभी ये सिद्धांत निकलेगा, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, भगवान आप तो सर्वव्यापी हो। ये सारे सिद्धांत कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में भी इसके ऊपर काफी मुरली एक चली थी। भक्ति मार्ग में ये सिद्धांत तभी निकलेगा अंत में जब हमारी अवस्था ये होगी। और बाबा ने यह भी बोला, बीच में कई मुरलियां चली थी, जो आत्मा निर्लेप है वो सिद्धांत भी कैसे निकलेगा। हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी हम एकदम निर्लेप जैसी, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, हार जीत सब में समान, कोई भी बाहर की परिस्थिति हमारी स्थिति को डामाडोल नहीं करेगी, बिल्कुल जैसे आत्मा निर्लेप हो जाएगी। इतनी ऊंची स्थिति, निर्लेप होती नहीं है आत्मा सब वो, लेकिन हमारी स्थिति इतनी महान हो जाएगी कि कोई भी बाहर की परिस्थिति बदल नहीं सकेगी। और तब ये सिद्धांत लिखा जाएगा कि आत्मा तो निर्लेप है। ये मेरे उन्हीं बच्चों की बाबा ने कहा जो मेरे चुने हुए, जो माला के मणके और जो बच्चे जिनका पुरुषार्थ अच्छा, उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसे साक्षी दृष्टा भी बोलते हैं। दृष्टा माने देखने की नहीं, देखने के साथ साथ उनपे प्रभाव भी न पड़े, इतनी महान स्थिति। और ये अंत में होनी है, आप उसको याद करो। अभी तो कई बार ये होगा, पता नहीं होगी नहीं होगी, कैसे होगी, लेकिन नहीं, कलप पहले भी हमारी हुई थी और उसी को सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहो, मैं आत्मा की, मुझे ऐसी स्थिति है, कोई भी बाहर की परिस्थिति मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, मेरी आंतरिक स्थिति इतनी महान हो जो बाबा की थी, मजबूत थी, बाहर की परिस्थिति को भी बदल देती थी। अभी आज के साधारण वैज्ञानिक भी ये प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध कर दिया। प्रोफेसर एमोटो का नाम सुना है आप लोगों ने, जापान के साइंटिस्ट, उनका असिस्टेंट यहां भी आया था मधुबन में, और उसने यहाँ आके भी वो प्रयोग दिखाया था। दादी जानकी जी ने भी यहाँ के द्वारा सुबह 4 बजे के मेडिटेशन के बाद 2010 में ये प्रयोग किया था। और उसमें जानते हैं आप सब, मतलब 2 गिलास में पानी लिया, 1 गिलास में पॉजिटिव थॉट्स दिए प्रोफेसर एमोटो ने, हे जल आप ही जीवन हो, आपके द्वारा ही सारा जीवन चलता है, मैं आपको नमन करता हूँ, आप कितने कल्याणकारी हो, ऐसे पॉजिटिव चिंतन, आई थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, ऐसे लेबल भी काट के चिपकाए गए गिलास के ऊपर, और दूसरे गिलास पर पानी वही है लेकिन निगेटिव, आई हेट यू, हे जल आपके द्वारा कितने प्राण ले लिए जाते हैं, मैं आपसे घृणा करता हूँ। उधर पॉजिटिव में मदर टेरेसा नाम लिखा तो इधर हिटलर का नाम लिखा, एडॉल्फ हिटलर, वो सुनकर ही ना उसकी क्रूअल पिक्चर सामने आ जाती है, कैसा अकल्याणकारी आदि आदि। तो इधर निगेटिव पानी वही है, लेकिन यहां से बस पॉजिटिव चिंतन दिया, बड़े अच्छे क्रिस्टल बने, ऑर्नामेंट शेप के, और जिधर निगेटिव दिए थे बड़े इररेगुलर शेप के, वो सारा उस पर अवेलेबल है। और बाबा अभी यही चाहता है कि हमारी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत हो, इतनी शक्तिशाली हो कि बाहर की परिस्थिति को बदल दे। यही 5 तत्वों के ऊपर विजय पाने का साधन है, जो बाबा रोज बोलता है 5 तत्वों को भी कल्याणकारी बनाओ। तो क्या होगा जब हम उनके प्रति भी शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे। और ये जल के ऊपर ही नहीं, 3 तत्वों पर तो प्रयोग हो गया है ऐसे अलग अलग। तो ये अब शरीर में तो जल 24 घंटा 70% तो वाटर ही है शरीर में। तो जब बाहर के जल पर हमारी विचारधारा इतना असर डाल सकती है बाहर के जल के ऊपर, तो जो जल 24 घंटे हमारे अंदर रहता है उस पर तो कितना प्रभाव डालेगी। इसीलिए बाबा कहता है हमेशा पॉजिटिव चिंतन, किसी के प्रति भी कोई भी निगेटिव चिंतन कभी भी ना हो। एक तो ये जल के ऊपर, ऐसी पृथ्वी के ऊपर भी, जैसे रूरल डेवलपमेंट विंग में ना, उसमें भी करा गया है बीच के ऊपर। पहले दिन राजू भाई भी आपको बता रहे थे कि बीच के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ये, तो बाबा भी यही चाहता है बस कि हमारी आंतरिक स्थिति इतनी महान। वो हमने देखा 18 जनवरी को, यही हिस्ट्री हॉल नीचे था, हिस्ट्री हॉल में हम लोग मुरली सुन रहे थे, बाबा अपनी अंतिम मुरली सुना रहे थे। 18 जनवरी की रात बाबा क्लास में आए, मुरली सुना रहे थे, बिल्कुल बाबा का स्वरूप ऐसा, एकदम जैसे बाल कृष्ण की तरह लग रहा था। अंतिम कर्मातीत अवस्था थी बाबा की। देखो कैसे बैठे बैठे हमारे मन में हा? मुरली सुनते सुनते एक विचार आया, जो आपको बताया जैसे अभी थोड़ी देर पहले कि आसाम से आए थे, तो बस मुरली अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो कई बार कईयों के मन में आता है कि भाई मुरली तो सुनी, क्या ही अच्छा हो अगर स्टेज पर जाके चांस मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, ऐसे होता है ना। तो तब हम भी मुरली सुन रहे थे हिस्ट्री हॉल में, मन में विचार आया कि बस अब क्या ही अच्छा हो बाबा हमारे डेवलपमेंट, हमारे उत्थान के लिए और कुछ महावाक्य बोले। अब देखो वो तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा, मन जीते जगत जीत पूरा, तो इधर संकल्प हुआ और उधर बाबा तक जैसे संकल्प पहुंचा। और इसीलिए होता है ना, जो इष्ट देव होते हैं सब भक्तों की अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो बाबा तो हमारा इष्ट देव जैसे, तो बस बाबा तक संकल्प पहुंचा और तुरंत ही बाबा ने बस मुरली में नाम उच्चारण करके, हाँ देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, पर चिंतन पर निंदा नहीं करता, आदि आदि कई करके बाबा ने सारे महावाक्य उच्चारण दिए। लेकिन मेन चीज क्या है, संकल्प भक्त के मन में, जैसे भक्ति में बोलते हैं उठा, और इष्ट देव के द्वारा बस कौन सा शब्द, तथास्तु। भगवान के डिक्शनरी में एक ही शब्द है और कुछ नहीं है, तथास्तु। इसीलिए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा चिंतन करते हैं। बाई चांस हमारे मन में अगर निगेटिव चिंतन हुआ, किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग हुई, वाइब्रेशन हुआ, तो बस भगवान के उसमें तो यही शब्द है एक, तथास्तु, वही पूरा हो जाएगा। यहीं पर ही अगर सोचा भाई बात तो अच्छी है, मुरली की बात और उसकी बात की, भाई माला के मणके की बात, लेकिन भाई माला का मणका हम प्रवृत्ति वाले गृहस्थी वाले कैसे बनेंगे, माला में तो देखो दादियां हैं, ये समर्पित हमारी बहने हैं, भाई लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और हम लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम लोग कैसे। तो बस मन में अगर ये विचार ही आया ना, अब भगवान का अगर तथास्तु हो गया तो किसका नुकसान हुआ। तो इसीलिए अभी ये समय चल ही रहा है संकल्प सिद्धि का समय, इसलिए संकल्प सिद्धि के समय कभी भी ये चेक करते चले कि हमारे मन में कोई कमजोर संकल्प ना हो, क्योंकि ये थोड़ा भी संकल्प अगर रहा, इसीलिए मन के ही लिए हमेशा कहा है मन मना भाव, गीता में भी अंत में कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन सारा खेल ही मन का है, और ये मन ही मणका बना देता है माला का। और इसीलिए इस पर बाबा का प्रत्यक्ष दिखता था, जो बताया ना इच्छा। मैंने एक बार बड़ी दीदी से पूछा जब बाबा ने के बाद ना, कि बाबा दीदी ये कैसे, मनमोहनी दीदी, कि ये कैसे होता है कि बाबा के सम्मुख हम जाते हैं और बस एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा एकदम बता देता, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ये कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो दीदी ने कहा था कि देखो जो कर्मातीत अवस्था के निकट आत्माएं होती हैं, तो इच्छा मात्रम अविद्या जो बात बाबा कहता है, उनका स्वरूप भी वैसा हो जाता है। उदाहरण देके बताया, जैसे पानी होता है ना, तो पानी अगर निर्मल पानी है, कोई उसमें हलचल नहीं है, लहरें नहीं है, हम अपनी छवि भी स्पष्ट देख सकते हैं। आप छोटा सा एक कंकड़ भेज फेंक दो, उसमें लहरें पैदा होंगी तो अपनी छवि दिखाई देगी स्पष्ट, नहीं ना दूसरे की ना अपनी। बस ऐसे ही हमारे मन में भी अगर कोई संकल्पों की कुछ भी अपनी लहरें होंगी, संकल्प होंगे, हम दूसरे के संकल्प को जब पढ़ ही नहीं सकेंगे, समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे अपने संकल्प मिक्स हो जाएंगे, और जब पढ़ नहीं सकेंगे तो उनके संकल्पों को हम पूर्ण कैसे कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ये मन को संकल्पों पर विजय होते हैं। और बाबा में देखा कैसे होता था, बाबा एक एक सेकेंड यूज करते थे, टाइम दिया होता था बाबा, या तो यहाँ झोपड़ी में मिलते थे, या हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, या अपने कमरे में मिलते थे, जैसा पार्टी का स्वरूप होता था, बड़ा छोटा। तो टीचर पार्टी लेके आती थी, बस बाबा बैठे हैं, आंख खुली भी हुई है, लेकिन शरीर भले यहाँ है, तन से यहाँ है, लेकिन मन से बाबा जैसे कई और होते थे, जो बाबा ने पांच स्वरूपों का वर्णन बताया, हो सकता है उन पांच स्वरूपों के वर्णन में लिप्त रहते हो चिंतन में। टीचर आके बोलती थी, बाबा बाबा, तो बाबा को कभी कभी ऐसे जैसे जर्क सा ना, है बच्ची अच्छा आई हो पार्टी लेके, वो बताती थी मैं पार्टी लेके आई हूँ, तो हाँ आओ बच्ची ले आओ, बच्चों को, बच्चे आते थे बाबा से मिलते थे, और बाबा से जब मिलते थे ना, तो वहां पर बाबा से मिलके बाबा हर एक का हालचाल पूछते थे टोली, और बाबा की ये मिलने की विधि भी बड़ी, जैसा बाहरी फोटो लगाया ना, तो जब भी बाबा बस ऐसे आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे आओ प्यारे, और जैसे ही बाबा के स्पर्श हुआ, बाबा की गोदी में गए, सबसे बड़ी एक ब्यूटी होती थी, तुरंत विधि ही हो जाते थे, देह से परे हो जाते थे। मतलब इतनी बाबा की शक्ति कि वो दूसरे को विधेयी कर देती थी, फिर थोड़ी देर में बाबा ऐसे हाँ हाँ बच्चे ऐसे थपथपाते थे, और फिर जैसे हम देह में खींच के आते थे, बाबा टोली खिलाते थे, फिर एक जाता था दूसरा आता था, ऐसे टर्न बाय टर्न। तो बताने का भाव क्या है कि बाबा ने चूंकि अपने को पक्का कर लिया था मैं आत्मा हूँ, सबने पढ़ा है जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा, लिख लिख के, तो बाबा जिसको भी दृष्टि देता था ना, वो विधेयी हो जाता था, भले थोड़े समय के लिए। और उसके बाद हमारा भी यही पहचान है कि हम अगर अपनी दृष्टि वृत्ति अपने वाइब्रेशन के द्वारा दूसरे को अगर हम विधेयी कर सकते हैं, इसका मतलब मैं आत्मा खुद विधेयी देही अभिमानी की स्टेज में ऊंचे और ऊंचे जाती है। हर चीज को किसी न किसी मेजर से चेक करना चाहिए, और जितना हम चेक करते चलेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम ठीक पुरुषार्थ की लाइन पर हैं कि नहीं। और उस दिन बाबा 18 जनवरी को मुरली चला रहे थे, बाबा को वैसे खांसी कई बार आती थी, ऐसे बाबा गला भी साफ करते थे, सर्दी का महीना था बहुत, तो जब खांसी आती थी, सुना होगा आपने, बाबा कहते थे शिव बाबा ये मेरी सखी, देखो ये खांसी है ना, ये मेरी सखी है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मैं चाहता हूँ इससे दूर होना, लेकिन ये सखी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो शिव बाबा क्या बोलते थे, हाँ बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना, इसमें बाबा कोई कंसेशन तुम्हें नहीं करेगा कि तुम्हारे शरीर में आता है तो तुम्हारा हिसाब किताब बाबा चुकतू कर दे, नहीं। तो जो ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं, तो मुझे या आपको कोई कंसेशन होगा, हाँ? तो कभी भी तन की व्याधि से, कर्म भोग से हम परेशान ना हो, ये ना समझे यंग लोग कि अरे ये तो बूढ़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, लेकिन पूरे कल्प के हिसाब से तो आत्मा सबकी बूढ़ी है। तो इसीलिए अभी न चाहते हुए भी ऐसे ऐसे हिसाब किताब चुकतू शरीर के द्वारा करने पड़ेंगे जो कभी सोचे भी नहीं होंगे, तो उसके लिए यही आवश्यक है। बाबा क्या करता था, देखो हरेक को अपने लिए युक्ति रचनी होती है, कई बार मुरली सुनाते बाबा को, कई बार खांसी आती थी, आंख भी गीली हो जाती थी, तो बस हम लोगों को लगता था देखने वालों को कि बाबा को तो बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन बस दूसरे इच्छा ना, वही हिस्ट्री हॉल में रखा ना एक चित्र कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का, ट्रांसलाइट का, तो बाबा बस दूसरे ही क्षण कहते हैं, देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है, व्याधि है, सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं और बस, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, ऐसा देखो नारायण तुम बच्चे भी ऐसे बनोगे जहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बाबा के चेहरे पर वही खुशी और वो आ जाती थी जो एक कुछ सेकंड पहले इतनी व्याधि थी, आंतरिक स्थिति से बाबा बाहर की परिस्थिति को बदल देता था शरीर में, वही चाहता। और कैसे, बाबा कहता भी था बच्चे इतना तुम्हें होना, खुशी में क्या करना चाहिए, खगिया मारनी चाहिए। हाँ बाबा करके भी दिखाया, देखिया है ना बच्चे, वाह वाह बाबा ऐसे करके बाबा करता था। भाव क्या है कि ऐसा हम अपनी स्थिति को इतनी शक्तिशाली बना लें कि वो बाहर की परिस्थिति जो है ना उस वो बदल जाए, वो हमारे ऊपर काबू ना कर सके। तो ये बाबा का प्रत्यक्ष कितनी बार देखा। और अंतिम दिन की बात बताते हैं, 18 जनवरी को बाबा ने ये मुरली चलाई। अब मुरली चला के बाबा क्लास के बाहर आए, हम लोग देख रहे थे, वह खड़े हुए, दृष्टि दी बाबा के सामने, दादी प्रकाशमणि जी बैठे थे, तो बाबा की दृष्टि बार बार घूम के दादी जी की तरफ आती थी, ज्यादा देर तक दृष्टि बाबा वहां देते थे फिर हर एक बच्चे को। उसके बाद फिर बाबा एक कदम गए फिर रुके, फिर दृष्टि दी बाबा ने, फिर एक कदम गए फिर रुके। तो बाबा को हो आज मैं बच्चों को जैसे शक्ति से संपन्न कर दूं, क्योंकि बाबा को तो ना अंदर से भासना ये आ गई थी ये मेरा अंतिम मिलन है। क्योंकि जैसे ही बाबा दरवाजे पर गए बाबा ने यही कहा, क्या बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये बाबा ने पहले कभी नहीं बोला, विदा लेता है, छुट्टी लेता है, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेके बाबा गए। जो शास्त्रों में भीष्म पितामह का गायन है इच्छा मृत्यु का ना, बाबा को भी जैसे आभास हो गया। और इसीलिए बाबा ने उस दिन, रोज क्लास होती है 9 बजे रात को, उस दिन बाबा ने जमुना प्रसाद भाई को पहले 7 बजे बुला के बोला, आज बाबा अभी क्लास कराएगा 7:30-8:15, तो सब बच्चों को कह दो कि तैयार होके वहां आ जाए, आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा। जरूर अंदर से ये भासना होगी कि आज अंतिम मुरली है। तो बाबा ने, और उस मुरली की ये विशेषता थी कि उस मुरली में बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की नहीं जरूरत पड़ी। यहाँ पर ओम शांति भवन में ऑडियो विजुअल काउंटर है, उसमें वो मुरली की कैसेट्स मिलती है, अंतिम मुरली की 18 जनवरी की साकार मुरली की, वो लें और सुने, पूरे ज्ञान का सारा सार उस आधा घंटे की मुरली में है। और एक बार भी बाबा को, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी ना अंत में, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, कोई भी कर्म भोग अपने हलचल नहीं दिखा सकेंगे, इतना हमारा वो योग बल की स्थिति होगी। एक बार भी बाबा को खांसी नहीं, फिर उसके बाद बाबा गए, ये कह के बाबा कमरे में गए। और जैसा हम सब ने सुना है कई बार कि बाबा दादी के हाथ में हाथ, बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो उसके बाद हुई, क्या हुई, 18 जनवरी की रात को बाबा ने ये शरीर छोड़ा, 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार कराया गया। क्योंकि सब बच्चे आ रहे थे, टेलीग्राम टेलीफोन आ रहे थे, आप रखो शरीर को, हम आ रहे हैं। और जब जाने से पहले बाबा का ना हम लोगों ने स्नान कराया, तो देखा बिल्कुल, जब वैसे आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, बाबा का शरीर जो है ना पहले की तरह ही बिल्कुल बहुत हद तक फ्लेक्सिबल, 72-65-70 घंटे तक शरीर रखा रहा, ना शरीर काला पड़ा, बिल्कुल वैसे ही चमकता, ना शरीर में कोई दुर्गंध आया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन दवाई नहीं लगाई गई, यहां तो थे यहां पर देखा, लेकिन बिल्कुल बाबा, ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। 5 तत्वों को भी जो जिनका ये शरीर बनाया बाबा ने इतना पवित्र कर लिया था। आज उसके बाद हमने 50 डॉक्टरों से पूछा कि ये हो सकता है, कहते नहीं है, तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, स्टिफ ना हो, ब्लड का सर्कुलेशन ही रुक गया, तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी। लेकिन हमने तो खुद देखा, लोगों ने जब स्नान कराया, जब उसके बाद बाबा को यहाँ शांति स्तंभ इधर तक लाए, यहाँ संस्कार किया गया, सब कुछ बिल्कुल भी एकदम लगता था चमकता हुआ शरीर के जैसे अभी बाबा उठ के बोलेगा हमेशा की तरह, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे, एकदम लाइट का बिल्कुल वैसे शरीर, कुछ भी ना दुर्गंध ना काला ना। बाबा यही हम बच्चों को चाहता है, आप भी इसी तरह प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त करो। तो ज्ञान उसके द्वारा हम लोग अपने संस्कारों पर, उन सब पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति के तत्वों पर कैसे, बाबा ने बड़ा सिंपल एक बात है उसमें, बाबा चाहता है, हम भी चाहते हैं हमारी अंत मते सो गते हो। लेकिन इमेजिन कीजिए, बैठे हैं, अर्थक्वेक आया, कल भी जापान में कहीं कुछ अर्थक्वेक आया था 7 की इंटेंसिटी का, ये तो बहुत आएंगे अर्थक्वेक, भूचाल, अगर ये भूचाल, ये बिल्डिंग गिरी, गर्डर गिरा, आप समझते हैं कि वो हमारी स्थिति रह सकेगी, चारों तरफ त्राही त्राही होगी, किसी की हड्डी फ्रैक्चर होगा, खून होगा, चारों तरफ बिल्डिंगों के नीचे बॉडीज दबी होंगी। किस रीति से हम ये प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, बाबा ने बड़ा बिल्कुल अपने बच्चों के लिए बात बताई है कि जिन बच्चों का बुद्धि योग ना मेरे साथ है, वो तो वायरलेस कनेक्शन होता है, आप बच्चों का वॉइस लेस कनेक्शन, जितनी निर्विकारी बुद्धि, प्लेन बुद्धि, क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि होती जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली आपको टचिंग होगी और आपके पैर ऑटोमेटिकली चाहते न चाहते भी उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। और इसीलिए आप बच्चों का बाल बांका नहीं होगा, भले चारों तरफ विनाश की उज्ज्वला होगी, लेकिन होगा कब ये, जब वायरलेस बुद्धि, और वो कब होगी, 5 तत्वों के लिए भी बाबा ने एक एक बात बताई है, हर तत्व के द्वारा ये तत्व को हम अपना फ्रेंड बना ले, मित्र बना ले। मित्र कभी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। मानो चारों तरफ बाबा ने बताया ये 2-3 तत्व खास विनाशकारी होंगे, पृथ्वी, जल, अभी भी ना हमेशा पहले अर्थ को एक आता है एक तत्व का, फिर सुनामी आई और वो 2004 में आई, उसके बाद भी आई 2 तत्वों का, जल का और पृथ्वी का, और अभी उत्तराखंड में 3 तत्वों का। कैसे, सबसे पहले तो क्लाउड बर्स्ट हुआ, वायु तत्व का, आकाश तत्व का, आकाश में बादल बनते हैं, ठीक है बादल बनते हैं, बरसात होती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट होके पहाड़ के ऊपर बाढ़ आ जाना और इतना ज्यादा पानी रिलीज होना जो 8-10 फीट तक सबको बहा के ले जाए, तो पहले आकाश तत्व का, उसके बाद ये जल तत्व, और फिर लैंडस्लाइड, पृथ्वी की हलचल। तो ये 3-3 तत्वों का आप इमेजिन करो, जो बाबा ने कहा है ऐसा समय होगा जब 5 तत्व एट ए टाइम हलचल में आएंगे तो कितना विनाशकारी सीन होगा, इसका तो टीवी में देखा या न्यूज सुना। और वो तो इसके लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं 5 तत्वों की हलचल के लिए, इन तत्वों को हम अपना, जल तत्व है इसको हम कैसे मित्र बना सकते हैं, जल में क्या गुण होता है विशेष है, शीतलता, उससे भी बड़ा गुण है एडजस्टमेंट। जल को गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में, हर जगह ऐसे मेरा भी स्वभाव संस्कार ऐसा हो जाए, ऐसी एडजस्टमेंट हो जाए, मैं ये ना कहूं कि इनके साथ तो एडजस्ट होके चल सकता हूं, इनके साथ नहीं चल सकता। हमारा भी यही है सबका, कि किसी के साथ हम अपने संस्कारों को बड़ा मैच्ड पाते हैं, फ्रेंडशिप, और किसी के साथ टकराव वाला नहीं। अगर केवल एक गुण धारण कर लिया हमने एडजस्टमेंट का, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चले, इसका मतलब जल तत्व का मैंने गुण धारण कर लिया, तो जितनी सुनामी आएगी, जितना फ्लड आएगा, जितना बारिश हो, कुछ हो, लेकिन ये जल मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मेरी मृत्यु जल के कारण नहीं हो सकती, जल के कारण दुख अशांति मुझे नहीं हो सकती, क्योंकि जल को मित्र बना लिया, ऑटोमेटिकली जल हमें उस जगह ले जाएगा जहां हमारा रक्षण होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है, सहनशीलता, लेकिन इससे भी बड़ा गुण है पृथ्वी का, दाता का। पृथ्वी हमेशा देती है, एक बीज आप बो दो पेड़ उग जाएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, दाता है पृथ्वी। तो मैं भी दाता का गुण धारण करूं, हमारे दर पर कोई भी आए खाली हाथ न जाए। कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, प्रेम, सहयोग, शुभ भावना, शुभकामना, मीठा बोलना, आदर, सत्कार, जिसमें कुछ खर्चा नहीं होता। हर आत्मा ये महसूस करे ये मेरे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं ये मेरे, और इस कारण से जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं, कुछ मेहनत नहीं, वो हम देते चलेंगे, इसका मतलब पृथ्वी तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया। जितनी भूचाल आएगा, जितनी हलचल हो, जितनी बिल्डिंग गिरे, कुछ भी होगी, लेकिन पृथ्वी हमारा चूंकि मित्र बन गए, ये ऑटोमेटिकली ऐसी जगह हमें ले जाएगी जहां सेफ्टी होगी, जहां पर चारों तरफ हाहाकार, भुज में भी देखा ना, चारों तरफ हाहाकार था, बिल्डिंग गिर रही थी, बाबा का एक मकान का एक हिस्सा बिल्कुल सेफ रहा। और बहने बताते हैं उधर यूजुअली हम ये जीना यूज करते थे, उस वक्त जैसे ये हुई हमने दूसरा जीने की तरफ दौड़ के गए, बिना सोचे हुए वो जीना का पोर्शन रह गया और जो रेगुलर यूज करते थे वो थोड़ा गिर गया। तो ऑटोमेटिकली आपका रक्षण होगा, प्रकृति के तत्व बंधे हुए हैं हमारी रक्षा, क्योंकि हमने उन्हें फ्रेंड बना लिया, मित्र बना लिया, उनको सद्भाव सत्कार देकर। ऐसे वायु का क्या गुण है? हल्का। वायु हर चीज को ऊपर उड़ाती है, ले जाती है। ऐसे अगर हम भी हर परिस्थिति में हल्के रहेंगे, भारी ना हो, परिस्थिति आती हम भारी हो जाते हैं, बस नींद नहीं आती, भारीपन होता है, बोलने का दिल नहीं करता दूसरे से, लेकिन बाबा कहता है वायु की तरह अगर हल्के रहेंगे तो जितना भी समुद्र में तूफान आएगा, साइक्लोन आएंगे, समुद्र के किनारे रहने वालों को तो उसका सामना ज्यादा करना है। उड़ीसा में हम देखते हैं, ढाका गए बांग्लादेश, उसी दिन ही वहां पर बहुत तेज तूफान था, लेकिन ये वायु की तरह अगर हल्का रहना हम जानते हैं ना, तो जितना भी तूफान होगा ये वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। साइक्लोन देखो, अमेरिका में इतने बड़े बड़े लैला और ये अलग अलग जो है ना, अलग अलग नाम के है ना साइक्लोन, तो वो आते हैं इतने बड़ी ताकत विश्व की, लेकिन प्रकृति की ताकत के आगे हाथ फैला देते हैं। तो वायु की तरह हल्का रहना सीखे, सूर्य की तरह क्या, अग्नि का गुण क्या है, हर चीज को का रूप बदल देना, अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है, आज की मुरली में भी था ना, ज्वाला स्वरूप, ऐसा ऐसा हमारा योग की ज्वाला प्रज्वलित रहे कि जो आए उसका रूप बदल जाए। बाबा ने कहा आपके सम्मुख रोता हुआ व्यक्ति आए, हंसता हुआ जाए, उसका रूप बदल जाए, वो तब होगा जब हमने ज्वाला स्वरूप धारण किया होगा। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए, सुख के सागर का अनुभव करते हुए वो आत्मा पार हो जाए। तो हमारा अगर अग्नि स्वरूप होगा सूरज की तरह, जैसे बताया अग्नि, तो हम किसी भी व्यक्ति के स्वरूप को दुख से सुख की तरफ, अशांति से शांति की तरफ बदल सकते हैं। और इसी तरह आकाश में कौन सा बड़ा गुण होता है? विशालता। और आकाश ही कम्युनिकेशन का साधन है, आकाश में ही ना, ये आकाश है, सैटेलाइट छोड़े हुए हैं तो हम एक मिनट में उससे बात कर लेते हैं, वो मोबाइल से, टीवी जो है, कोई भी दृश्य देख सकते हैं कहीं से कहीं, ये सब क्यों? क्योंकि आकाश में सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन हमारा सबसे है पूरी दुनिया से। ऐसे ही हम देखें कि हमारा किसी से भी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो, हर आत्मा से कम्युनिकेशन रहे। होता क्या है, जिसके प्रति लाइकिंग होती है उससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत बहुत लंबा चलता है, और डिसलाइकिंग होती है तो सामने आते हुए भी हम बिना उसकी तरफ नजर किए हुए चले जाते हैं। इसीलिए अब पूरी दुनिया की आत्माओं से हमें चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व महाराजन, महारानी हम बनने वाले हैं। हमारा विश्व की आत्माओं से कम्युनिकेशन कैसे होगा? जो बाबा ने बताया, अमृत वेले उठ के उन आत्माओं को हम योग का दान देते चले, उनको महसूस करें वो हमारे सम्मुख हैं, और बस जितना जितना हम उनको, हम योग का दान, इन सब चीजों का दान, तो आकाश की तरह विशालता जितनी हमारे हृदय में, दिल के अंदर आती जाएगी आकाश की तरह, इसका मतलब ये आकाश तत्व को भी हमने अपना मित्र बना लिया। तो अंत समय में आकाश मार्ग से आने वाले जो भी विनाश के साधन होंगे, बम हो, रॉकेट हो, मिसाइल्स हो, कोई भी हो, वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश तत्व हमारा मित्र बन गया और वो बंधा हुआ है हमारी सेफ्टी के लिए। ये पांचों तत्व हमारे लिए, प्रकृति के ये पांच तत्व दुनिया के लिए विनाश का साधन बनेंगे, लेकिन अगर हमने ये प्रकृति के तत्वों के गुणों को धारण किया होगा तो ये तत्व हमारी रक्षा का साधन, हमारे मित्र बनके हमारी रक्षा करेंगे। ये तो एक एक गुण मैंने बताया समय के अभाव में, हर एक में आठ आठ दस दस गुण ऐसे हर तत्व के, बहुत बड़ी वो है। तो उस तत्व के गुणों को निकाल करके उन गुणों को हम धारण करते चले तो प्रकृति के तत्वों से भी हमारी रक्षा, और इन पर बाबा के समान हम विजय प्राप्त करके अंत मते सोगति को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति।